नमस्कार आदाब दोस्तों, दुनिया गोल है और भूगोल के सवाल भी गोल गोल है, तो घबराने की क्या बात है जब मोबाइल वाणी के क्वेश्चन मार्क शाला आपके साथ है, जहां भूगोल विषय के विशेषज्ञ आपको देने वाले हैं नए अध्याय की नई सीख। चलिए सुनते हैं उन्हें।
हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर राजीव चंद्रशेखर सिंह बालिका उच्च विद्यालय वासुदेवपुर मुंगेर। बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आप सबों के समक्ष ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी प्रणाली। यह ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में हम लोग पहले जानेंगे। यह नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत की मान सरोवर झील से 80 किलोमीटर पूर्व की ओर 5,150 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसका उद्गम दक्षिण पश्चिम में सतलज और सिंधु के स्रोतों के निकट ही है। यह नदी सांपू नदी के नाम से लद्दाख और कैलाश की घाटियों के बीच महान हिमालय श्रेणी के समानांतर पूरब की ओर 1,100 किलोमीटर तक तिब्बत में बहती है। आगे यह चलकर हिमालय की प्रमुख श्रेणी का चक्कर काटकर यह दक्षिण की ओर तेजी से घूमकर मुड़ जाती है और हजारों मीटर नीचे गिरकर यह असम के उत्तरी पूर्वी कोने से दिहांग अथवा ब्रह्मपुत्र नाम से बहती है। यहाँ इसमें उत्तर की ओर लोहित नदी आकर मिलती है और यह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती जाती है। इसमें सुबानसिरी, भाद्री, घनसिरी, बनंडी, मानस, संकोस, धारला और तिस्ता नदियां उत्तरी किनारे से और बुरही दिहांग, दिसांग, दीखो, जांझी, कुलसी और जिंजीराम दक्षिण किनारे से मिलती है। गोरो पहाड़ियां से मुड़कर यह दक्षिण दिशा में बहने लगती है। इसी समय इसमें से इसकी शाखा यमुना निकलती है, जो दक्षिण में बहती हुई पद्मा नदी से मिलती है तथा प्रमुख धारा जो यमुना से पतली है दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर मेघना नदी से मिल जाती है। अंत में पद्मा और यमुना दोनों नदियां मेघना नदी में चांदपुर के निकट आकर मिलती है। ये संयुक्त धाराएं बहुत चौड़ी होकर एक बड़ी डेल्टा बनाती है, जिसमें बहुत से द्वीप बनते हैं। इसकी संपूर्ण लंबाई 2,900 किलोमीटर है तथा इसका अपवाह प्रदेश 5,80,080 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से भारत में यह 1,346 किलोमीटर बहती है तथा इसका अपवाह क्षेत्र 3,40,000 वर्ग किलोमीटर है। अब बच्चों, हम लोग जानेंगे सिंधु नदी प्रणाली। इस क्रम की नदियां पश्चिम हिमालय प्रदेश का जल अरब सागर में ले जाकर गिराती हैं, जिसमें पहली नदी है सिंधु नदी। यह नदी लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में 5,000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, कैलाश की चोटी के दूसरी ओर से सिंगी, खंबाव और दक्षिण की ओर से गर्तंगचू नदियां आकर इसमें मिलती है। यह ब्रह्मपुत्र नदी से ठीक विपरीत दिशा में बहती है। 350 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर बहने के बाद यह नंगा पर्वत पर समकोण बनाती हुई मुड़ती है, तब यह अनेक चट्टानों और प्रपातों पर होती हुई अटक के पास मैदान में प्रवेश करती है। यहीं से यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु की कई सहायक नदियां हैं। जास्कर श्रेणी से निकलने वाली जास्कर नदी लेह के निकट इसमें मिलती है, जो जिला दर्रे के उत्तर की ओर से आने वाली तथा काराकोरम के उत्तर की ओर से आने वाली सयांग नदी फिरिस के निकट इसमें मिलती है। सिगार और गिलगिट अन्य सहायक नदियां हैं जो इसमें मिलती है। वहीं मैदान का आधा भाग तय करने के बाद सतलज और चिनाव की संयुक्त धाराएं पंचनद से मिलती है। आगे यह सिंध के शुष्क प्रदेश में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। अगली नदी है सतलज, सतलज या शत्रदु। यह नदी कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढालों पर मानसरोवर झील के निकट 5000 मीटर की ऊंचाई के राक्षस ताल से निकलती है। तिब्बत में यह नदी बहुत ही सकरे भाग से बहती है, जहां इसके किनारे 180 से 200 मीटर ऊंचे हैं। राक्षस ताल में सीप किला तक नदी की दिशा उत्तर पश्चिम की ओर रहती है। रूपनगर के निकट यह शिवालिक श्रेणी का चक्कर काटकर मैदान में प्रवेश करती है। यहीं पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। आगे बढ़ने पर यह जलंधर दोआब को सरहिंद पठार से अलग करती है और पश्चिम की ओर बहने लगती है। कपूरथला के दक्षिणी पश्चिमी सिरे पर यह व्यास से मिल जाती है और मिथनकोट के निकट सिंधु से। 11वीं शताब्दी में यह नदी सिंधु में ना मिलकर बीकानेर जिले में बहने वाली हकारा और सरस्वती नदी से मिलती थी। यह नदी भारत में 1050 किलोमीटर बहती है तथा इसका अपवाह क्षेत्र 2487 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला नदी है चिनाव। यह नदी लाहौल घाटी में बारालाचा दर्रे से विपरीत दिशा में 4900 मीटर की ऊंचाई से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। ये दोनों तांडी के निकट मिलकर चंबा जिले में उत्तर पश्चिमी दिशा में लगभग 161 किलोमीटर बहती है। किश्तवाड़ के निकट एक बड़ा तेज मोड़ लेकर यह पीर पंजाल श्रेणी में गहरी कंदरा बनाकर मैदान की ओर बहती है, जहां इसकी घाटी चौड़ी हो जाती है। यहीं से यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह भारत में 1180 किलोमीटर बहती है तथा 27755 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जल बहाकर ले जाती है। अगला नदी है बच्चों झेलम। यह नदी कश्मीर में शेषनाग झील से निकलकर 212 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई बुलर झील से मिलती है। इस मार्ग में यह मुख्य हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच बहती है। बारामूला से आगे यह 2130 मीटर गहरी घाटी बनाती है। आगे जाकर इसमें किशन गंगा नदी मिल जाती है। यह पिंड दानन खान और बेहरा होती हुई त्रिमू के निकट चिनाव में मिलती है। संपूर्ण नदी की लंबाई 400 किलोमीटर है तथा इसका अपवाह क्षेत्र 28490 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कश्मीर राज्य में आवागमन एवं व्यापार में बड़ी सहायता मिलती है। श्रीनगर में इस पर शिकारे या बजरे अधिक चलाए जाते हैं और नावों में फल सब्जियों और फूलों की खेती भी की जाती है। रावी, यह नदी पंजाब की 5 नदियों में से सबसे छोटी है बच्चों, जो धौलाधर पर्वतमाला के उत्तरी और पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण ढालों का जल बहाकर लाती है। यह अपने मार्ग में बड़ी ऊंची श्रेणियों में होकर कंदराएं बनाती हुई बहती है। यह बसोली के निकट मैदानी भाग में बहने लगती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है और इसके अपवाह क्षेत्र का क्षेत्रफल 25957 वर्ग किलोमीटर है। अगली नदी है व्यास। रावी के स्रोत के निकट से ही यह नदी भी निकलती है। अपने उद्गम से 9 किलोमीटर दूर यह कोटी दर्रे से होकर बहती है। धौलाधर पर्वतमाला को काटकर यह कुल्लू मुंडी और कांगड़ा जिलों में बहती हुई कपूरथला और अमृतसर होती हुई कपूरथला के निकट सतलज में मिल जाती है। यह 470 किलोमीटर लंबी है और इसका अपवाह क्षेत्र 25900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाएं नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।